جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ الفرقان کی تفسیر جو رمضان المبارک میں ہم نے شروع کری تھی پڑھنا وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اس میں جو ایک تفصیلی بحث مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی آیات نمبر 61 اور 62 کے تحت، تو وہی ابھی ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہو جائے گی. تو آج ہم پیج نمبر 495 کے اوپر جہاں تک چھوڑا تھا آخری کلاس میں وہاں سے پڑھ رہے ہیں، پیج 495 اگر یہاں پہ کوئی لکھ دے تو ٹھیک ہے. تو اس میں آخری آخری ہیڈنگ جو حضرت نے لگائی ہے وہ ہے کہ ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا، یعنی جو انسان نے سائنس کے اوپر یعنی جو اس درجے پہ جا کر یہ تحقیق کری ہے نا کہ سورج کتنا بڑا ہے اور چاند کتنا بڑا ہے اور سورج کتنا دور ہے چاند کتنا دور ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو ہیونلی باڈیز کے اوپر اور اسپیس کی ایکسپلوریشن کے اوپر جو ریسرچز ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں تفصیل سے پیچھے کلام کر کے اور اس میں سے آخر میں جو ایک اسپیس ایکسپلورر جو کہ چاند تک پہنچ بھی گیا تھا جان گلین، تو اس کے کچھ یعنی جو اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات وغیرہ لکھے تھے تو ان کا تذکرہ کر کے پھر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات انسان نے کری ہیں ان موضوعات کے اوپر نا، یعنی ہر موضوع کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ ان موضوعات کے اوپر کہ یہ اسپیس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، وہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور وہاں سے چیزیں لے کر کے آنی چاہیے وغیرہ، ٹھیک ہے. تو ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے ان سے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ آخری کلاس میں جو اختتام کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ یعنی اس سے جو نقصانات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں انسانیت کو، اور فائدے جو ہیں وہ یعنی کم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فائدے کم ہوئے ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں، بلکہ جو فائدے بھی ہوئے ہیں وہ فائدے بھی اس شکل کے فائدے ہوئے ہیں کہ بھائی جو نقصانات آپ نے انسانیت کو پہنچائے نا، اب ان نقصانات کو تھوڑا سا ان کا علاج کرنے کے لیے آپ نے جو فائدے پہنچائے، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے تو آپ نے نقصان پہنچائے، صحیح ہے، پہلے آپ نے لوگوں کو بیمار کیا، صحیح ہے، لوگوں کو بیمار کرنے سے جو ان کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی نا بیمار ہونے کی وجہ سے، تو اب آپ نے اس بیماری کا علاج دریافت کیا، ہے نا، تو اب وہ جو علاج دریافت کیا گیا بیماری کا تو اس علاج کو آپ جو ہے نا وہ فائدے کے طور پر پیٹ رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی بڑا فائدہ ہوا بڑا فائدہ ہوا بڑا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے نا، کیا فائدہ ہوا بھائی، بیماری کا علاج دریافت ہو گیا، ہے نا، بیماری کا علاج دریافت ہو گیا بڑا فائدہ ہوا. اچھا اب اس کے اوپر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ساری بیماریاں آئیں کیوں تھیں، یہ بیماریاں لایا کون تھا، کس وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہوئی تھیں، اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی، ہے نا، سب یہ اس کے اوپر یعنی تالیاں پیٹتے ہیں، تالیاں بجانے والے تالیاں کس بات پہ بجاتے ہیں، علاج دریافت کر لیا، ٹھیک ہے. تو مردوں کی کلاس میں اس کی مثال دی تھی، آپ کی کلاس میں تو نہیں لیکن کیونکہ یہی موضوع مردوں میں بھی چل رہا تھی ان ایسنشلز فار مین کے اندر، تو وہاں پر یہ مثال دی تھی کہ सारा साल जो है ना वो माँ की मट्टी पलीत करी, माँ मदर, राइट। सारा साल जो है ना वो मदर मदर को जलील किया, ठीक है ना। अब वो जब जलील हो गई और जो है वो बहुत अफसरदा हो गई और बहुत जो है ना वो यानी दिल उसका टूट गया, राइट, जो कि औलाद ने उसके साथ सलूक किया, तो मदर का दिल टूट गया। तो अब इस टूटे हुए दिल को खुश करने के लिए मदर्स डे मना लिया, राइट, मदर्स डे मना लिया, और उस मदर्स डे के अंदर मदर को जाकर के खूब सारे तोहफे दे दिए, उसको जो है वो खाने के ऊपर बाहर ले गए, है ना, और उसके जो है वो बड़ा उसके साथ टाइम गुजारा, अपने बच्चों को भी लेकर के आ गए कि जी दादी के साथ टाइम गुजारो, तुम नानी के साथ तुम टाइम गुजारो, ये हो गया मदर्स डे, ठीक है ना। तो अब ये मदर्स डे जो है ये इसको कोई कहे कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं ये लोग, है ना, ये जो वेस्टर्न ट्रेडिशन वाले हैं ये तो बहुत जबरदस्त, देखो माँ के लिए कितना इन्होंने दिन मुख्तस कर दिया है ना, पूरा दिन माँ के साथ गुजारते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। तो क्या ख्याल है इसके ऊपर क्या बोला जाएगा, इसको यही कहा जाएगा ना कि भाई अकल की रत्ती नहीं है इनके पास, है ना, इनकी अकल जो है वो घास चलने गई हुई है, ठीक है, क्या ख्याल है आपका। अब ये नहीं कहना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना, बल्कि इसको फायदे के तौर पे, हाँ बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, मदर्स डे मना लिया उन्होंने, ठीक है। तो यही हाल है, बस यही हाल कोरोना वायरस का भी है, ठीक है, कि वो पूरी ह्यूमैनिटी की जो यानी इम्यूनिटी सिस्टम है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है ना, उस इम्यूनिटी सिस्टम को आपने जो है वो बुरी बुरी गिजाएं इजाद करके और पूरे के पूरे दुनिया के माहौल को जो है ना वो आपने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए से उस इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ना वो आपने उसका बेड़ा गरक कर दिया, ठीक है ना। अब उस इम्यूनिटी सिस्टम का जब बेड़ा गरक हो गया तो अब जो हल्का यानी जो हल्का हो या बड़ा हो जैसा भी हो वायरस आता है, और वो वायरस जो है ना वो जाकर के जो है ना वो बॉडी के अंदर तहलका मचा देता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो खराब करके रख देता है और क्या कुछ नहीं कर देता है, ठीक है। तो अब लोग जो है वो उस वायरस से मरना शुरू हो गए क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना खराब हुआ हुआ है। किसी को शुगर की बीमारी हुई हुई है क्योंकि आपने जो वाइट शुगर ईजाद करी है, ये वाइट शुगर जो है इससे यानी जिन लोगों ने तहकीक करी है वो बताते हैं कि सिगरेट नोशी से जितना नुकसान नहीं होता ना उतना नुकसान वाइट शुगर से होता है। तो वाइट शुगर की कंजम्पशन कितनी ज्यादा है, राइट। तो ये वाइट शुगर किसने ईजाद करी है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ईजाद करी है, ठीक है ना। तो अब ये सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर और वाइट और ये शुगर की बीमारी और फलानी बीमारियां जो है ना वो आपकी इन हरकतों की वजह से पैदा हो गई, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। अब जो वायरस आ रहा है तो उस वायरस से जो लोग मर रहे हैं, तो अब जो है जी साइंस साइंस की तहकीकात के जरिए से ना उस वायरस का जो है वो आप वैक्सीनेशन बनाएंगे, राइट, और वैक्सीनेशन बनाने वाले को जो है वो मसीहा समझा जाएगा, मसीहा, ये बड़ी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेज, इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बड़ा फायदा हो गया, साइंस साइंस की तरक्की का बड़ा फायदा हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या बात समझ में भी आ रही है किसी को, ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं, था ठीक है। तो अगर ये दो मिसालें आपको समझ में आई ना, मदर्स डे वाली मिसाल और ये कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन वाली मिसाल, ठीक है, तो फिर ये जो हजरत आगे फरमा रहे हैं ये बात भी समझना आसान हो जाएगी, ठीक है, कि ये जो तहकीकात इन्होंने करी हैं तो इन तहकीकात के जरिए से इन्होंने जो स्पेस वॉर्स का सिस्टम बनाया है, ठीक है ना, स्टार वॉर्स कहते हैं एक्चुअली इसको, सही है। और ये जो बैलिस्टिक मिजाइल्स बनाए हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इसी तहकीकात के जरिए से बनाए गए हैं, ये जो सैटेलाइट्स ऊपर भेजते हैं, फिर इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए से ये सैटेलाइट डिशेस बनाई गई हैं जिनके जरिए से के फोहश और गंदे और वक्त ज़ाया करने वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो दुनिया के कोने कोने के अंदर आप देख सकते हैं, इन सैटेलाइट डिशेस के जरिए से ये देख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसी के जरिए से जो है वो ये जो सोशल मीडिया है, राइट, ये सोशल मीडिया भी इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके ही तो चलता है पूरी दुनिया के अंदर, है कि पाकिस्तान के रहने वाला जो है वो अमेरिका के रहने वाले से जो है वो हर वक्त बात करता रहता है, ना इसको सोना नसीब है ना उसको सोना नसीब है, जब उसके काम करने का वक्त होता है तो इसके सोने का वक्त होता है, जब इसके सोने का वक्त होता है तो उसके काम करने का वक्त होता है ना। तो हर वक्त ही जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, काम के ना काज के, अल्लाह से कनेक्शन तो खत्म हो गया, राइट, अल्लाह से कब कनेक्टेड होंगे, अल्लाह से कब जो है वो राजो न्याज की बातें करेंगे, राइट। वो तो आपस में बात करके वक्त ही नहीं ख़त्म होता। एक एक मौलाना साहब, एक आलिम दीन, ठीक है, वो नौजवान आलिम दीन, वो कहने लगे कि मैं रोज़ाना 400 सफ़े पढ़ता था, 400 सफ़े रोज़ाना मेरा मुताला होता था। कहते हैं जब से सोशल मीडिया आया है ना, जब से मेरे पास ये स्मार्टफोन आया है, मैं 10 सफ़े भी नहीं पढ़ सकता, मैं एक दिन में 10 सफ़े का मुताला भी नहीं कर पाता हूँ। कैन यू इमेजिन दैट। तो ये सोशल मीडिया जो आया है, जिससे कि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है हर वक्त, ये क्या है? ये नेमत है, खुदाबंदी है ये। कभी ये आला ही रब्बी खुमा तो का ज़बान पढ़ेंगे इसके ऊपर, या ये जो है वो एक अजाब है अल्लाह ताला का, है ना। तो फरमाते हैं कि इन तहकीकात ने इंसान और इंसानियत को क्या बख्शा। जहाँ तक इंसानी जद्दोजहद और फिक्री इर्तिका और उसकी अजूबा कारी और हैरत अंगेज़ इनकशाफात का मामला है, ठीक है ना, ये सब बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं। इंसानी जद्दोजहद तो चलो आसान है, फिक्री इर्तिका यानी हमारे फिक्र की जो जो प्रोग्रेस है, जो इसकी जिसकी डेवलपमेंट है, हमारी सोच की डेवलपमेंट, ठीक, फिक्री इर्तिका, और उसकी अजूबा कारी यानी इंसान की सोच जो है, फिक्र जो है, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, अजीब अजीब बातें इंसान के जहन के अंदर आती हैं, और फिर उसके नतीजे में हैरत अंगेज इनकशाफात जो उसके ऊपर फिर चीज़ें खुलती हैं कि अच्छा ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो आप लोग खाना पकाने की तरकीबें होती हैं, ये खाने पकाने की तरकीबें किधर से आती हैं? ये खातून हो या मर्द हो, बहुत सारे मर्द और इनको भी बड़े शौक होते हैं खाना पकाने के, ठीक है ना। तो वो एक सादा सा खाना पकाते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं अच्छा अब जो है ना मुझे और कैसे खाना पकाना चाहिए, और क्या करना। अब मसाले ऊपर थोड़ा सा मसाला चेंज किया, थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा डाली, थोड़ी वो चीज़ ज़्यादा डाली, हो यानी अल्लाह का शुक्र है साहब जिसको बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है सब चीज़ों का, लेकिन बेगम साहबा कभी कभी देख लेती हैं इस तरह की चीज़ें, है ना। तो यानी ऐसे ऐसे लोगों ने जो है वो रेसिपीज ईजाद करी हुई हैं कि हैरानगी होती है, हैरत अंगेज इनकशाफात रेसिपीज के मामले में, कैसे कैसे जो है वो इधर की चीज़ उधर मिलाई, उधर की इधर मिलाई और एक नई डिश बना दी, है ना। तो ये इंसान की सोच ही तो है, ये फिक्र ही तो है कि बैठ करके वो इस तरह की सोचें करते रहते हैं और फिर एक से एक चीज़ें बनाता रहता है। तो वो अपनी जगह पर दुरुस्त और आम नज़रों के एतबार से काबिल तहसीन भी है, यानी कोई फ़ायदेमंद चीज़ें अगर निकल रही हैं इस तरीके से तो फिर ठीक है। लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए कि बेमसरफ शोबदागरी, बेमसरफ यानी जिससे कि आपको फ़ायदा ना होता हो, तो उस किस्म की जो आप ये शोबदाबाजियाँ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर खाने पीने की तरकीबें आप एक से एक निकाले चले जा रहे हैं, तो ये बेमसरफ ही हुआ ना, यानी इससे खा खा करके जो है वो कौन सा हमें जो है वो जन्नत मिल रही होती है, ठीक है, तो ये बेमसरफ में आएगा। उसी तरह साइंसी तहकीकात जो बेमसरफ हो रही हैं, तो वो बेमसरफ शोबदागरी और तमाशबीनी, यानी एक बस एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए, है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपने बनाई हुई है सारी की सारी, जिससे इंसान और इंसानियत का कोई मुतद भी फ़ायदा ना हो, यानी ऐसा फ़ायदा जिससे कि आप किसी दूसरे बंदे को फ़ायदा ना पहुंचा सको, मुतदी, ठीक है, यानी आप किसी अगले बंदे को जो जो लाजम और मुतअद्दी, मुतअद्दी जिसको कहते हैं लगने वाली चीज़ ना, तो मोहतद भी ही यानी जिससे कि किसी दूसरा कोई दूसरा शख्स आपसे फायदा उठा सके, ठीक है। तो वो हुक्मा और उकला का काम नहीं है, ठीक है। तो फिर अब तो यानी एक एक लफ्ज को अलग अलग करके जो जुमला पढ़ा है ना, तो अब मैं दोबारा इस जुमले को पढ़ लेता हूँ कि अगर इस पर गौर किया जाए कि बेमसरफ शोबदागरी और तमाशबीनी जिससे इंसान और इंसानियत का कोई मोहतद भी ही फायदा ना हो, वो हुकमा और उकला का काम नहीं है, यानी किसी वाइज पर्सन का, विजडम वाले इंसान का और अकल वाले इंसान का ये काम नहीं होता कि वो इस तरह की हरकतें करता रहे जिससे कि कोई यानी फायदा ना हासिल हो रहा हो। देखना ये चाहिए कि इस 50 साल की जद्दोजहद, 50 साल तो उस वक्त थे जब मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ये लिख रहे थे, यानी ये साइंस, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन को, 50 साल हुए थे उस वक्त, अब तो जो है ये 100 साल तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है, तो देखना ये चाहिए कि इस 50 साल की जद्दोजहद और अरबों खरबों रुपया जो बहुत से इंसानों के मसाइब दूर करने के लिए काफी होता, उसको आग की नजर कर देने और चांद तक पहुंचकर वहां की खाक और पत्थर समेट लाने से इंसान और इंसानियत को क्या फायदा पहुंचा? आग की नजर कर देने का क्या मतलब? कि जब रॉकेट इंजन्स है, जो ये रॉकेट जाता है ऊपर सैटेलाइट को लेकर के जाता है या स्पेस शटल को लेकर के जाता है, तो वो जो रॉकेट यानी उसके अंदर जो फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न होता है, ठीक है ना, तो वो कैसे आता है ये सब कुछ? ये रकम से आता है ना, पैसे से आता है ना, ठीक है ना, सोना चांदी इसके पीछे जो है वो जल रहा होता है बेसिकली। ठीक है, तो आग की नज़र कर देना, ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ रॉकेट शॉकेट का तो ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा बहुत तो खैर अब तो होने लगा है, लेकिन पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, हम शबे बारात में जो है ना, वो अपने पैसों को फुलझड़ियों की नज़र कर देते थे, है ना। तो उसको क्या, उसको ये कहते थे ना कि जी आपने अपने रकम को जो है वो आग लगा दी, फुलझड़ियों की शक्ल में, पटाखों की शक्ल में, है ना। तो ये जो है उन्होंने बड़े पटाखे बनाए हुए हैं, अमेरिका और यूरोप वालों ने और रूस वालों ने बड़े पटाखे बनाए हुए, हम छोटे पटाखों के जरिए से अपने रकम को जाया करते थे। ठीक है, तो हमारे लिए चूंकि ये बड़े पटाखे हैं, तो हम इन बड़े पटाखों से बड़े मरूब हो जाते हैं। बड़ा जबरदस्त पटाखे बनाए इन लोगों ने, है ना, और अपने छोटे पटाखों को हम जो है वो बुरा भला कहते रहते हैं। भाई दोनों ही पटाखे हैं, छोटे पटाखे भी पटाखे ही होते हैं, बड़े पटाखे भी पटाखे होते हैं। ठीक है, वो भी जला रहे होते हैं पैसे को, ये भी जला रहे होते हैं पैसे। इंसान की बड़ी भारी तादाद ऐसे लोगों की है जो भूख से मरते हैं, उनको लिबास और सर छुपाने की जगह मुयस्सर नहीं होती। क्या इस जद्दोजहद ने उनके अफलास व मुसीबत का कोई हल निकाला है, या उनके अमराज व आफात से सेहत व आफियत का कोई इंतजाम किया, या उनके लिए कल्बी सुकून व राहत का कोई सामान फराहम किया? तो यकीन है कि किसी के पास इसका जवाज बजुज नफी के नहीं होगा। भाई क्या कह रहे हैं कि सबको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो कुछ नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज के दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास इसका जवाब नफी में होगा कि नहीं नहीं किया है इन्होंने, बहुत किया है। राइट, जैसे वो बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है ना वो उनको वैक्सीनेशन लगाई हैं, फिर वो वैक्सीनेशन और उनके यानी उनकी गलत उनकी उनकी गुर्बत को दूर किया है, और ये क्या है वो क्या है। तो ये तो हजरत ने तो बहुत यानी क्या कहते हैं खुशगुमानी करते हुए जुमला लिख दिया है ना, लेकिन शायद हजरत का वास्ता उन लोगों से नहीं पड़ा था कि जिनका दिमाग बिल्कुल ही उलट चुका है, बिल्कुल ही दिमाग उलट चुका है, और वो वाकई जो है ना इसका जवाब जो है ना वो इस बात में देंगे कि हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बड़ी गुर्बत दूर करी है। लेकिन इसकी वजह ये होती है कि या तो उनका दिमाग बिल्कुल ही उलट चुका होता है, ठीक है ना, या बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं असल में, ठीक है, बिल्कुल ही अंधे। अब ये कैसे अंधे, मतलब गुर्बत और ये जो रूहानी परेशानियां हैं लोगों को, जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, ये तो दूर नहीं करी हैं, तो हम इसका कैसे जवाब देंगे कि वाकई इन्होंने दूर नहीं करी है? तो इसके लिए जो है वो हम अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ना, पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत है और इतने लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। फिर हम चले जाएं इंडिया, तो इंडिया में तो उससे भी ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। ये जो स्लम्स होते हैं बॉम्बे के, आजकल आ रहा है ना कोरोना वायरस की वजह से, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वो आपका पता नहीं कल कलकत्ता के अंदर है या बॉम्बे के अंदर है, और वहाँ पे लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, है? लोगों के घरों में बाथरूम तो होते नहीं है। तो ये जो एक स्टडी आई थी कि जिसको डेफिकेशन कहते हैं, अपनी नजासत को अपने जिस्म से निकालने के लिए बाथरूम्स लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते, तो वो जो दूर जाते हैं यानी दूर क्या जाते हैं, खैर वो उसी एरिया के अंदर ही जो है वो बाथरूम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कितनी नजासत और कितनी बीमारियां जो हैं वो फैल रही होती है, ये भी स्टडी सारी मौजूद है। ठीक है, तो पाकिस्तान में इतने करोड़ लोग हैं वो गुरबत की लाइन से नीचे रहते हैं, इंडिया में उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं गुरबत की लाइन से नीचे रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा, है क्योंकि अमेरिका जो है वो स्पेस पे पहुंच चुका है, अमेरिका ने जो है वो स्टार वॉर्स प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो अमेरिका में तो हर शख्स जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स नजर आती हैं अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क में चले जाएं, शिकागो में चले जाएं, सियर्स टावर, राइट, तो यार जिस शिकागो में रहता था और 10 साल उधर ही रहे, तो सियर्स टावर और जो डाउनटाउन होता था ना शिकागो का डाउन डाउन टाउन जिसको कहते हैं, जहां पर के ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और खूबसूरत खूबसूरत जो है वो गलियां, और यानी दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी दुकानें थी वो सब कुछ वहां पर डाउनटाउन के अंदर मौजूद था। शिकागो का डाउनटाउन मशहूर है कि ये अमेरिका का सबसे साफ सुथरा और खूबसूरत डाउनटाउन है। ठीक है, सबसे बड़ी बड़ी इमारतें भी वहीं पर हैं और सबसे साफ सुथरा भी वो है। उसी डाउनटाउन से आप 10 मिनट, 10 से 15 मिनट की बस आप ड्राइव करें, ठीक है, आप ऐसे इलाके में 10 मतलब कि 10 10 मिनट बस, 15 मिनट भी नहीं करें, क्योंकि हाईवेज अच्छी होती हैं तो वो आप तेजी से सफर कर सकते हैं ना, 10 मिनट मैक्सिमम आप ड्राइव करें, आप ऐसे इलाके के अंदर पहुंच जाएंगे कि जहां पर आप दाखिल होते ही ना आपका दिल जो है ना वो खौफ ज़दा हो जाएगा, एक हैबत और खौफ और दहशतदारी हो जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना ये कालों का इलाका शुरू हो जाता है, वो कहते हैं कालों का इलाका। ठीक है, वो वहां पर ऐसी टूटी हुई बिल्डिंग्स, जली हुई बिल्डिंग्स, और यानी यानी ऐसे वहां पे हालात होते हैं कि यानी आपको खौफ होता है कि कोई कोई अभी आएगा और आपको जो है ना वो मार मार करके चला जाएगा, आपसे लूट करके चला जाएगा आपको, आपका माल, आपका पैसा, और आपको कत्ल करके जाएगा, ऐसे नहीं है कि छोड़ के जाएगा, वो कत्ल करके जाएगा आप। ठीक है ना, घरों में उन्होंने जो है ना वो लूट मार से बचने के लिए उन्होंने जालियां लगाई हुई होती हैं, लोहे की जालियां अपने खिड़कियों के ऊपर। ठीक है, और दुकानों के अंदर ना आप इस तरीके से अंदर जा करके आसानी के साथ जो है वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, बल्कि वो बाहर से ही जो है वो खड़े खड़े आपको खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है, यानी बहुत ऐसा मामला होता है कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर किसी ने जाके देखा है तो उसी को अंदाजा होगा, वरना बगैर देखे आप सोच नहीं सकते कि जहां पर दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंपनियों के ऑफिस थे वहीं से 10 मिनट दूर कितने बुरे हालात में इंसान जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ शिकागो में नहीं है, ये हर बड़े शहर के अंदर ये यही हाल है। ठीक है, अब यही काले जो है आमतौर पे काले, लेकिन खैर अब तो गोरे भी खैर बहुत सारे इस हालत को में वहां पर रहते हैं। तो अब जो ये लूट मार मची थी अमेरिका के अंदर, पूरे अमेरिका में ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, तो ये लूट मार इन्हीं लोगों ने मचाई है फिर। ठीक है, और ये हर जगह को लूटा है उन्होंने, यानी जो न्यूयॉर्क के अंदर सैक्स फिफ्थ एवेन्यू जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा इलाका है, वहां की दुकानों को आकर के लूटा, और सिर्फ अमीरों को नहीं लूटा, गरीबों को भी लूटा, यानी अपने ही जैसे गरीबों को भी जा करके लूट रहे हैं, उन्हीं की छोटी छोटी दुकानों को जा करके जो है ना वो उन्होंने आग लगा दी, और उसके अंदर से जो उनके हाथ लगा, जो हाथ लगा लेकर के चले गए। ठीक है ना, तो ये अमेरिका के अंदर हो रहा है सारी चीज़, अभी हुई है थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले है ना, अब जो है बड़ी मुश्किल से वो मिन्नतें कर करके लोगों की वो लोगों को रोक रहे हैं कि मत करो ये सारी चीजें। ठीक है ना, तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है इनकी तरक्की। सही है, तो जो मरूब होता है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, जिसको कि कुछ अकल समझ इस्तेमाल करना वो वैसे ही फारिग हो चुका होता है उससे, उसको ये बातें नजर नहीं आ रही होती। ठीक है ना, वो कहते हैं हाँ जी बड़ा इन्होंने तरक्की करी है, बड़ा इंसानियत को उन्होंने, इतना बड़ा इंसानियत को उरूज बख्शा है इन्होंने, है ना, तो ये है हकीकत, तो कुछ और होती है ना। यही वजह है कि कुरान और सुन्नत इंसान को ऐसे ला यानी मशगले में मुब्तला करने से गुरेज करते हैं, और कायनात आलम में गौर व फिक्र और तदबीर की दावत सिर्फ दो हैसियतों से देते हैं। यानी ये जो कुरान हमें गौर व फिक्र करने का कहता है ना कि भाई देखो, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत। ठीक है ना, ये है ना कि क्यों नहीं देखते इन सब चीजों की तरफ, आसमान, जमीन है, और ऊंट और पहाड़, राइट, तो ये दो हैसियतों से, दो रीजन से, हैसियतों का मतलब कि दो मकसदों से कुरान दावत देता है इन चीजों की तरफ देखने के लिए, ठीक है ना। पहली हैसियत जो असल मकसूद है वो ये है कि इन आसार अजीबा को देखकर मुअस्सर हकीकी, यानी जो हकीकी तौर पर असर करने वाली जात है, हकीकी तौर पर असर करने वाली, हकीकी तौर पर किसी चीज को मुतासर करने वाली जो जात है, राइट, और उस गैर महसूस कुव्वत का यकीन कर लें। गैर महसूस का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को महसूस नहीं हो सकता, गैर महसूस का मतलब ये है कि हम अपनी हवासे खमसा से अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकते, हवासे खमसा, ठीक है, हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, और अल्लाह ताला की कोई खुशबू सूंघ नहीं सकते अपनी इन नाक नाक से खुशबू सूंघ नहीं सकते अल्लाह ताला की, ठीक है ना। तो गैर महसूस का ये मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला के वजूद का इदराक नहीं कर सकते, अपनी अकल से अल्लाह ताला की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकते, या अपने दिल में अल्लाह ताला का एहसास नहीं कर सकते, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो गैर महसूस कुव्वत का मतलब ये हो गया कि फाइव सेंसेस से आप अल्लाह को महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो असल मकसूद क्या है कि इन आसार अजीबा को, यानी ये जो अजीब चीजें दुनिया कायनात में मौजूद है, इनको देखकर मुअस्सर हकीकी और उस गैर महसूस कुव्वत का यकीन कर लें जो इस सारे निजाम को चला रही है, उसी का नाम खुदा है, ठीक है ना। हर लैंग्वेज में, फारसी में उसको खुदा कहते हैं, राइट, अंग्रेजी में उसको गॉड कहते हैं, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, वो ईश्वर कहते हैं शायद, राइट, और अरबी जुबान में उसका असल नाम जो उसने अपने लिए पसंद किया, खुद अल्लाह, ठीक है ना, ये अरबी में उसको कहते हैं, जो उसको उसका अपना पसंदीदा नाम है, ठीक है। दूसरे, यानी दूसरी हैसियत, दूसरा मकसद इन चीजों की तरफ जो कुरान हमें देखने का की दावत देता है, उसका दूसरा मकसद, उन जमीनी और आसमानी मखलूकात में अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए हर जरूरत की चीज बदियत फरमा दी है, हमारे फायदे के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए चीजें अल्लाह ताला ने रखी हैं आसमान और जमीन के अंदर, ठीक है, आसमान और जमीन की मखलूकात, यानी जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है उनके अंदर। इंसान का काम यह है कि अपनी अक्लो शऊर और जद्दोजहद से काम लेकर उन चीजों को जमीन के खजाइन से निकालने और इस्तेमाल करने के तरीके सीख ले, ठीक है ना। ये जो खजाने रखे हैं तो ये हमारे इस्तेमाल के लिए रखे हैं, ठीक है, जैसे कोयला रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, और सोना चांदी रखा हुआ है, और इस तरह की और चीजें बहुत सारी। पहली हैसियत असल मकसूद, ठीक है ना, और दूसरी हैसियत सानवी रफाए जरूरत के लिए, ठीक है, यानी सानवी हैसियत रखता है सेकेंडरी, और रफाए जरूरत यानी जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसलिए जरूरत से जायद इसमें इन्हिमाक पसंदीदा नहीं है, ठीक है ना भाई, जरूरत को पूरी करने के लिए है ना जमीन के खजाने। अब आप इसको जरूरत की हद तक रखेंगे तो ठीक है, आपके लिए फायदा मंद होगा, लेकिन जब आप इसको जरूरत से ज्यादा लेकर के जाएंगे तो फिर ये जरूरत जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर ये क्या बन जाती है, आप लोगों से पूछना वैसे मैंने छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जरूरत जब लिमिट क्रॉस कर जाती है तो क्या बन जाती है, नहीं पता, खैर आपसे सवाल किया जा रहा है, आप ये तो मैंने कहा ही नहीं था ऐसे। जरूरत जब लिमिट क्रॉस कर जाती है तो फिर क्या करते हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा चीजें करने शुरू हो जाते हैं तो फिर उसको क्या नाम दिया जाता है, जी ख्वाहिश बन जाती है, ठीक है ना। तो जब ख्वाहिश बन जाती है तो हाँ, और फिर वो लालच, ख्वाहिश की फिर लालच होती है इंसान को, ठीक है। तो जब आप ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो ख्वाहिशात के पीछे भागने से ही इंसान के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, बीमारियां, ठीक है। बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, ख्वाहिशात के पीछे भागने की वजह से पैदा होती हैं, और ये बीमारियां दोनों तरह की होती हैं, जिस्मानी भी होती हैं, रूहानी भी होती हैं, ठीक है। तो जैसा आपने लालच लिखा है ना यहाँ पर, लालच जो है ये एक रूहानी बीमारी है, ठीक है। और डायबिटीज ये एक जिस्मानी बीमारी है, एंजाइटी ये एक जिस्मानी बीमारी है, ठीक है। तो ये जिस्मानी बीमारियां और रूहानी बीमारियां ये कैसे पैदा होती हैं? ख्वाहिश के पीछे भागने से, ख्वाहिश को परसू करने से, जरूरत को परसू करने से नहीं होती, ठीक है। तो वही फरमा रहे हैं कि भाई जरूरत से जायद इसके अंदर इन्हिमाक पसंदीदा नहीं है, और जाहिर है वो पसंदीदा क्यों नहीं होता, क्योंकि उससे बीमारियां पैदा होती हैं। कायनात आलम में गौर व फिक्र और तदब्बुर की दोनों हैसियतें इंसान के लिए आसान भी हैं, नतीजा खेज भी हैं, ठीक है। जरूरियात पूरी करना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, और नतीजा खेज यानी उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप जरूरियात को परसू कर रहे होते हैं, उनको आप पूरा करने की मेहनत और जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तो ये दे गेट यू रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। इन दोनों हैसियतों के नताइज में कदीम व जदीद फलासफे का कोई इख्तलाफ भी नहीं है, ठीक है ना। यानी ये तो जो दोनों दो पर्पजेज है ना, तो इनके जो जो यानी इनके बारे में जो कंक्लूजन्स हैं, तो ना तो मॉडर्न साइंस जो है उसके अंदर कोई एक्चुअली इस जुमले का मतलब ये होगा कि जो फिलोसोफर्स थे, एंशियंट फिलोसोफर्स, ग्रीक और रोमन और इजिप्शियन और चाइनीज, राइट, और इंडियन, ये जो फिलोसोफर्स थे उनके जो कंक्लूजन्स थे और आज की जो साइंस के कंक्लूजन्स हैं, इन दोनों में कोई इख्तलाफ भी नहीं है, इन इन दो बातों में कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ना वो तो यानी हमारे एक्सेस के अंदर जो चीजें मौजूद है ना दुनिया के अंदर, एक्सेसिबल चीजें जो हैं, ये तो उन ये तो वो चीजें हैं, ठीक है ना, कि जिनके जरिए से हम अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं और जिनके जरिए से हम अपनी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बातें जो हैं ये तो कोई ऐसी मुश्किल बातें हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी वजह से फिलोसोफर्स और मॉडर्न साइंटिस्ट के दरमियान भी कोई ऐसा इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो ये भी तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। ये इनके सब इख्तलाफात अफलाक और सैयारात की हैयत व हकीकत से मुताल्लिक हैं, ठीक है ना। यानी इस ये जो जो इनके जो ओपिनियंस के डिफरेंसेस हैं वो तो यानी फलकियात, जिसको एस्ट्रोनॉमी के वो वाले कि भाई कितना बड़ा है और कितना दूर है और क्या, ये सारी चीजें इनके अंदर ये सारी इख्तलाफात है ना, जिनको कुरान ने बेजरूरत और नाकाबिले हुसूल करार देकर नजरअंदाज कर दिया है, ठीक है। जैसे पीछे दो इख्तलाफात हमने क्या पढ़े थे, एक तो था पाइथागोरस और दूसरा था बेथलीमूस या टोलमी जिसको कहते हैं शायद, ठीक है। तो इन दोनों के इख्तलाफात है ना, कि भी एक कहता है कि जी सितारे और सैयारे जो हैं वो सारे के सारे घूम रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा कहता है कि ये जो है ना वो आसमान के अंदर पैवस्त हुए हुए हैं। तो ये दो इख्तलाफात जो है वो यानी या जिसको कहना चाहिए एक इख्तलाफ जो है वो हमने पीछे पढ़ा, सही है। तो ये जो सारी डिस्कशन है ना, ये तो यानी बेजरूरत और नाकाबिले हुसूल है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं और इनकी हमें जरूरत नहीं है। अल्लामा बखीत मुफ्ती मिस्र ने अपनी किताब तौफीकुर रहमान में इल्म हय्यत को तीन हिस्सों में तकसीम किया है, यानी फिजिकल साइंसेस जो होती हैं उनको तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा वस्फी है जो अजराम समाविया की हरकत और हिसाबात से मुताल्लिक है, ठीक है ना, इसको वस्फी हिस्सा कहा, ठीक है। अजराम समाविया यानी हेवनली बॉडीज जो स्पेस के अंदर जो यानी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, तो उनकी मूवमेंट्स और उस मूवमेंट्स की कैलकुलेशन से मुताल्लिक है। दूसरा अमली, ठीक है ना, पहला वस्फी हिस्सा था, दूसरा अमली हिस्सा जो इन हिसाबात को मालूम करने के लिए आलात कदीमा व जदीदा से मुताल्लिक है, ठीक है, यानी जो जो आलात यानी जो टूल्स वगैरह इजाद किए गए। तीसरा तबीयी कि इनकी नेचर क्या है, इन यानी इन सैयारात और सितारात की एक्चुअली फिजिकल नेचर, फिजिकल फॉर्म क्या है, जो तो उसको क्या लिखते हैं कि जो अफलाक और सैयारात की हैयत व हकीकत से मुताल्लिक है, ठीक है ना। तो ये तीन हिस्से उन्होंने बनाए, इल्म हैयत के तीन हिस्से बनाए, पहला वस्वी, दूसरा अमली और तीसरा तबली। ओके, फिर उन्होंने लिखा है कि पहली दोनों किस्मों में माहिरीन कदीम व जदीद में इख्तलाफ कल अदम है, यानी इख्तलाफ नॉन एग्जिस्टेंट है पहली दो किस्मों में, वस्वी और अमली में, ठीक है। आलात इदराक में बहुत बड़ा इख्तलाफ होने के बावजूद नताइज पर अक्सर उमूर में सबका इत्तेफाक है, उनका शदीद इख्तलाफ सिर्फ तीसरी किस्म में। तीसरी किस्म क्या, कि ये जो प्लैनेट्स हैं और जो स्टार्स हैं ना, तो ये इनकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या है, इसके बारे में इख्तलाफ है। गौर कीजिए तो इंसानी जरूरत के मुताल्लिक भी यही पहली दो किस्में हैं, ठीक है ना। यानी हमारी जरूरियात का ताल्लुक सिर्फ वस्फी और अमली बातों के साथ है, ठीक है। यानी स्टार्स जो है ना, उनकी मूवमेंट आसमान में कैसे होती है, ठीक है ना। ये मूवमेंट क्यों, क्योंकि इन मूवमेंट्स के जरिए से आप डायरेक्शन, अपनी अपनी डायरेक्शन मालूम करते थे लोग, ठीक है। यानी ये बतौर कॉम्पस के इस्तेमाल होती थी ट्रैवलर्स के लिए, सही है। और जो सूरज की हरकत होती है आसमान के ऊपर, सूरज किधर से निकलता है, कैसे जाता है, और चांद जो है वो किधर से निकलता है, किधर जाता है, कब तुलू होता है, कब गुरूब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो, इनका ताल्लुक हमारी इबादात के साथ था, हमारे महीनों की कैलकुलेशंस के साथ था, ठीक है। क्योंकि चांद की बेसिस के ऊपर हमारे महीने कैलकुलेट होते हैं, राइट, और सूरज की मूवमेंट की बेसिस पर हमारे इबादतों के वक्त, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इबादत ही नमाज है, तो नमाज का ताल्लुक सूरज की मूवमेंट्स के साथ है, राइट। फजर कब शुरू हुई, फजर कब खत्म हुई, जोहर कब शुरू हुई, जोहर कब खत्म हुई, राइट। असर, मगरिब, इशा, ये पांचों की पांचों नमाजें जो हैं ये सूरज की मूवमेंट की बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं इनके टाइम्स, ठीक है। तो हमारी जरूरत जरूरत जो है ना, उनका ताल्लुक इन दो किस्मों के साथ है। तीसरी किस्म दूर अजकार भी है। दूर अस्कार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फार फेच्ड, ठीक है ना, फार फेच्ड यानी दूर बहुत, और मुश्किल भी है, ठीक है। इसीलिए कुरान और सुन्नत और आम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात ने इंसान को इस तीसरी बहस में नहीं उलझाया है, ठीक है। और बुजुर्गान सलफ ने ये नसीहत फरमाई, जुबा ताजा करदन बा इकरार तू, ये फारसी है वैसे, मुझे फारसी नहीं आती तो पढ़ने का फायदा नहीं। सूफिया कराम जो नजर कश्फी से इन चीजों को देखते हैं, उनका फैसला भी अंजाम कार वही है जो शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कि ये भी फारसी का शेर है तो इसको भी स्किप कर देते, ठीक है। तो सूफिया कराम जो है ना, वो भी जो है वो बेसिकली यानी अल्लाह ताला ने उनको नजर कश्फी अता फरमाई थी कि वो बगैर साइंसी तहकीकात को देखे हुए, ठीक है ना, बगैर जो है ना वो इन फिजिकल मुशाहदात किए हुए उनके सामने अल्लाह ताला इन हकीकतों को खोलते, ठीक है ना। ये कश्फ की नजर होती है कि जो के जिसके लिए आपको साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं होती। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ना, वो पिछले चंद सालों से हमारे हजरत देते हैं कि जो हमारे सिलसिले के मशायख जिक्र बतलाते हैं, मुराकबे के असबाब, ठीक है। तो मुराकबे के जो असबाब होते हैं ना, तो उनमें क्या करना होता है, जो लोग करते हैं उनको अंदाजा है, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुराकबे का तरीका ये होता है कि हमारे जिस्म में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको लताइफ कहा जाता है। तो आप अपनी आंखों को बंद करके, सर को झुका करके उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि जी मुझे यहाँ से अल्लाह 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 की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो वो लतीफ़ है कल्ब, लतीफ़ है रूह, लतीफ़ है सिर, लतीफ़ है खफी, लतीफ़ है अख्फा, फिर लतीफ़ है नफ्स और लतीफ़ है कालबिया। ये सेवन जो है वो पॉइंट्स होते हैं। तो इनमें से जो सिक्स पॉइंट है लतीफ़ है नफ्स, तो उसकी पोजीशन हमारे मशायख क्या बता रहे हैं, जो कि कई सौ साल से बता रहे हैं, कि ये जो है ना पेशानी के ऊपर होता है लतीफा नफ्स,
ठीक है, तो जब लतीफ़ नफ्स के ऊपर आप मुराकबा कर रहे होते हैं तो वहां से अल्लाह 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 की आवाज़ को आप इमेजिन करते हैं कि वहां से आवाज़ आ रही है। और लतीफ़ कालिबिया जो सातवां पॉइंट है वो बिल्कुल वस्ते सर में होता है, सर के वस्त में बिल्कुल, यानी आपके टॉप पर होता है। ठीक है, तो मशायख ने कहा कि जी आप यहाँ पर भी जिक्र करें, क्या मतलब कि यहाँ से भी इमेजिन करें कि अल्लाह 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 की आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, अब ये जो लताइफ वगैरह की जो तफसीर है ये ना तो कुरान के अंदर है ना यहाँ हदीस के अंदर है। ठीक है ना, तो इसका सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कुरान से साबित है हदीस से साबित है, ये है ही नहीं हदीस और कुरान से साबित। ठीक है ना, ये तो कशवी चीज़ है, ये तो एक एक्सपीरियंशियल चीज़ है। ठीक है, तो वो बहस तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, बिदत क्यों नहीं बनती वो भी एक बहस है जिसको कि जिसकी यहाँ पे एप्लीकेशन ही नहीं है। बहरहाल ये तो खाली नए लोगों के लिए बात बता दी कि ये ना तो ये बिदत है ना ये कुरान और हदीस से साबित है, तो इस डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बहरहाल बता ये रहे हैं कि ये जो जैसे दो पॉइंट्स बताया ना कि लतीफ़ नफ्स जो है उसका ताल्लुक पेशानी के साथ होता है और लतीफ़ कालबिया का ताल्लुक जो है ना वो बिल्कुल वस्ते सर पर होता है। ठीक है, तो ये तो कई सौ साल से मशायख ये बात कह रहे हैं भाई इस तरह से मुराकबा करो, इस तरह से मुराकबा करो। अच्छा, बिल्कुल रिसेंटली पिछले 10-15 साल के अंदर जो मेडिकल साइंस ने रिसर्चेस करी हैं तो उनसे इन्होंने क्या बताया, उनको तो पता भी नहीं मशायख क्या बताते रहे। ठीक है ना, तो लेकिन मेडिकल साइंस वालों ने क्या बताया कि जो नर्वस सिस्टम होता है इंसान का, ठीक है ना, ब्रेन, फिर ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं जो कि पूरी की पूरी इंसान के कल्ब के अंदर, कालिब, कालिब के अंदर जाती हैं, पूरे बदन के अंदर जाती हैं, जिसके लिए लफ्ज़ कालिब इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो वो जो नर्व्स होती हैं उनका एक वायरिंग मेश बनता है। ठीक है ना, यानी वो सारी की सारी नर्व जो है वो पूरे बदन से जो जो होकर के ऊपर आती हैं, वायर्स ऊपर आते हैं ना, तो वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल वस्ते सर के ऊपर आकर के मर्ज होते हैं। ठीक है ना, यानी गोया के हमारी बदन के अंदर जितनी वायरिंग है, वेन्स सॉरी नर्व्स की जो वायरिंग है, ठीक है ना, इनका एक वायरिंग मेश जो है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर बनता है जाकर। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है ब्रेन का जो कि हमारी डिजायर्स को कंट्रोल करता है, हमारी डिजायर्स को कंट्रोल करता है, वो पार्ट किधर होता है ब्रेन का, वो बिल्कुल फ्रंट में होता है पेशानी की तरफ। ठीक है, तो अब जब इस जो डिस्कवरी है इनकी, ठीक है ना, उसको आप मशायख की बातों से कंपेयर करें तो बिल्कुल यही बात है, मशायख बिल्कुल यही कहते हैं कि जो लतीफ़ नफ्स है वो इंसान की पेशानी पर होता है। ठीक है ना, बिकॉज नफ्स का ताल्लुक ख्वाहिशात के साथ होता है। ठीक है, तो वो जो है वो आपकी पेशानी पर होता है, और जो कालिबिया है यानी जहां से आपका पूरा कालिब जो है कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर होता है, कालिबिया का जो लतीफा होता है वो बिल्कुल सर के वस्त में होता है, बिल्कुल टॉप पर होता है बल्कि सर के। ठीक है, तो अब ये तो कशवी बात है ना जो कि मशाइख ने जो है वो कई सौ साल पहले बताई है, उन्होंने तो कोई इंसान के जिस्म को चीर फाड़ करके नहीं देखा था और उनके पास तो ऐसे इक्विपमेंट ही नहीं था कि जी वे ये नर्व्स को जो है वो देखते फिरें कि नर्व्स कहाँ से किधर जा रही है और कहाँ से आ रही है। ठीक है ना, तो जो चीज़ें जो है वो साइंस ने इतनी तरक्की करने के बाद जहाँ तक पहुँची है, तो वो बातें अल्लाह ताला ने हमारे मशायख को पहले से बताई हुई थी। ठीक है ना, तो ज़रूरत के तहत वो जितनी ज़रूरत थी जितनी नॉलेज की, वो ज़रूरत वाली नॉलेज जो है वो पहले से अवेलेबल है। ठीक है, बहरहाल तो यही बात उन्होंने लिखी थी कि सूफियाए कराम जो नज़रे कशफी से इन चीज़ों को देखते हैं उनका फैसला भी अंजाम कार वही है जो शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमा दिया। कि हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह ने भी इसी के ऊपर कोई शेर लिखा, अल्लाह करे कोई मौका मिले तो उनका तर्जुमा भी आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। इस तमाम तफसील का हासिल ये है कि कायनात अफलाक व फिजा और कायनात अर्जी में गौर व फिक्र इस हैसियत से है कि उनसे पैदा करने वाले की वजूद और तौहीद और उसकी बेमिसाल इल्म व कुदरत पर इस्तदलाल किया जा सके, ऐन मकसूद कुरानी है और कुरान जा बजा उसकी दावत दे रहा है। राइट, तौहीद का इकरार करना और अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर इस्तदलाल करना, तो ये तो ऐन मकसूद है और कुरान उसकी दावत देता है। और इस हैसियत से कि इन चीज़ों से इंसान के मुआशी मसाइल का ताल्लुक है, वो भी ज़रूरत की हद तक, इस ज़रूरत की हद तक वाले लफ्ज़ को जो है ना
वो हाईलाइट कर लेना चाहिए कि
वो भी जरूरत की हद तक मंशाए कुरानी है और कुरान उसकी तरफ भी दावत देता है, मगर इस फर्क के साथ कि मुआश और मुआशी जरूरियात को असल मकसद करार देकर उसमें इन्हिमाक ना करें कि यही हमारा असल मकसद है अपनी मुआशी जरूरियात को पूरा करना, ठीक है ना, तो ये ना करें इंसान और उसमें इन्हिमाक ना करें, यानी उसमें ओवर इंडल्जेंस ना करें इसके अंदर, बल्कि इस मौजूदा जिंदगी को असली जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी की तरफ एक सफर का दर्जा करार देकर उसके मुताबिक उसमें मशगूल, ठीक है ना, यानी इस दुनिया से उतना ले कि जितना उसकी आखिरत के लिए जरूरी है और जितना आखिरत के लिए जरूरी नहीं है तो उसको इस दुनिया में छोड़ दे, ठीक है, ये है असल मकसद कुरान का। तीसरी हैसियत, चूंकि इंसानी जरूरत से जायद भी है और उसका हुसूल भी मुश्किल है, उसमें उम्र अजीज सर्फ करने से गुरेज की तरफ इशारा करता है, ठीक है ना, यानी उसको भी कुरान ने जो है वो बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कि नहीं ऐसा ना करना कि सितारों की पैमाइश ना करना, राइट, और उनके फासलों की पैमाइश ना करना, तो ये भी एक्सप्लिसिटली अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मना नहीं किया है बल्कि इशारा किया है कि भाई इन सब चीजों के अंदर ना पढ़ना जो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद ना हो। यहाँ से ये भी वाजे हो गया कि मौजूदा साइंस की जदीद तरक्यात व तहकीकात को ऐन मंशाए कुरानी समझना भी गलत है, जैसा कि बास तजद्दुद पसंद उलमा ने लिखा है, और कुरान को उनका मुखालिफ कहना भी गलत है, ठीक, जैसा कि बास कदामत पसंद उलमा ने लिखा है, यानी कुछ उलमा ऐसे भी गुजरे हैं और आज भी यकीनन ऐसे मौजूद हैं कि इसको मुखालिफ कहना शुरू करते, ठीक है ना, कि भाई यानी जो भी आप तरक्यात और तहकीकात जो कर रहे हैं ना, तो ये कुरान जो है वो उसके सराहतन मुखालिफ है, ठीक है भाई, जरूरत की हद तक मुखालिफ नहीं है, जरूरत की हद तक मुखालिफ नहीं है, ठीक है, लेकिन ख्वाहिशात की हद तक तो मुखालिफ है ना, क्योंकि कुरान जो है वो ख्वाहिशात की परस्यूएंस को जो है वो मना करता है, ठीक है, तो जरूरत और ख्वाहिश के दरमियान जो फर्क है ना, ये फर्क मालूम करना असल चीज होता है, ठीक है ना, और ये बाउंड्री ड्रॉ करना, ये लाइन ड्रॉ करना कि जी कहाँ पे जरूरत खत्म होती है और कहाँ पे ख्वाहिश शुरू होती है, अब ये हर एक के बस की बात नहीं होती, खुसूसन काफिर, उसकी तो बिल्कुल ये बस की बात नहीं होती कि वो जरूरत पे जाकर के रुक जाए और फिर ख्वाहिश के अंदर दाखिल ना हो, ये तो काफिर के लिए मुमकिन ही नहीं है। उसी तरीके से एक मुसलमान हो, ठीक है, लेकिन फासिक हो, फाजिर हो, गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा हो, उसके लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो जरूरत पूरी करके रुक जाए और ख्वाहिशात में एंटर ना हो, ठीक है ना, इसके लिए तो भाई रूहानी कुव्वत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हकीकत ये है कि कुरान ने इन चीजों के बयान के लिए कुरान के ना सॉरी हकीकत ये है कि कुरान ना इन चीजों के बयान के लिए आया है, ना ये उसका मौजूए बहस है, ना इंसान के लिए उनका हासिल करना आसान है, ना इंसानी जरूरियात से उसका कोई ताल्लुक है, ठीक है, कुरान इन मामलात में साकित है, तजुर्बात और मुशाहदात से कोई चीज साबित हो जाए तो उसको कुरान के मुनाफी कहना भी सही नहीं है, यानी काफिर तजुर्बात कर रहे हैं, मुशाहदात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनसे वो अगर किसी चीज को वो साबित कर देते हैं, ठीक है, तो अब अगर वो कुरान के किसी सरी हुक्म के खिलाफ नहीं है तो खामखा जो है ना वो क्या कहते हैं मुखालफत बराए मुखालफत, तो ये भी जायज नहीं है, ठीक है। चांद के ऊपर पहुंचना, रहना बसना और वहां की मादनियात वगैरह से नफा उठाना वगैरह सब इसमें दाखिल हैं, इनमें से कोई चीज मुशाहदे और तजुर्बे से साबित हो जाए तो उसके इनकार की कोई वजह नहीं है, और जब तक साबित ना हो ख्वा मखा उसके तसव्वुरात बांधना और उसमें उम्र अजीज के औकात सर्फ करना भी कोई दानिशमंदी नहीं है। वल्लाहु सुबहानहु व तआला आलम, ठीक है, अब पता नहीं ये इबारत जो है वो आपके कितनी समझ में आई है थोड़ी सी यानी है तो क्लियर लेकिन हर एक के लिए समझना इतना मुश्किल इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, तो आसान अल्फाज में जब भी कोशिश कर रहे हैं बार बार इस बात को समझाने की कि बेसिकली जो है ना कुरान अपने ईमान वालों को جو اپنے اوپر یعنی قرآن پر جو ایمان رکھتے ہیں نا, تو ان کو قرآن جو ہے نا وہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم آخرت کو اپنا فوکس بناؤ اور آخرت کے فائدے کے لیے جو تمہیں کرنا پڑے وہ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہر کوئی تو قرآن پر ایمان نہیں لا رہا نا, ہر کوئی تو مسلمان اور مومن نہیں ہے نا. تو جو کافر ہیں تو وہ کافر کرتے رہتے ہیں اپنا کام, ٹھیک ہے نا. ان کو بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا, وہ مطلب ان کی مرضی ہوتی ہے, وہ جو چاہے وہ کریں. تو اب وہ جو کر رہے ہیں تو ان کے کرنے سے جو جو وہ کچھ نتائج میں پہنچتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, ان کے ان کنکلوژنس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کنکلوژنس چونکہ کافر نے ڈرا کیے ہیں تو اس وجہ سے وہ غلط ہے, کنکلوژنس غلط ہے, وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ کافر نے وہ نتیجہ بنایا. نہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بھائی کافر نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے, بھائی وہ نتیجہ جو ہے وہ اگر کسی قرآنی حکم کے خلاف ہو پھر ہم ریجیکٹ کریں گے, ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی, ٹھیک ہے. یہ ایکچولی بس یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہر چیز کا انکار کرنا شروع کر دیں. اور اچھا, کسی کو اس پوری ڈسکشن کے اوپر کوئی کوشچن کرنا ہے ابھی؟ اگلی دفعہ آپ کو کوئز لینا اس کے اوپر کیا کیا بتایا گیا. خیر, بہرحال اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا, اس کی کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا جس بھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ کو ایک ایک چیز, ایک ایک جملہ, ایک ایک ٹرمینالوجی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سمجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک بار پھر سے مطالعہ کر لے, ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ یا تو سوال پوچھ لے یا ریکارڈنگ سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے, ٹھیک ہے. لیکن اصل مقصد جو تھا وہ یہ کنکلوژن تھا, ٹھیک ہے نا, کہ ضرورت کیا ہوتی ہے, خواہش کیا ہوتی ہے. قرآن اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ضروریات کی حد تک رکھنا چاہتا ہے اور خواہشات میں انڈلج ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. اور دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم خواہشات کے میدان میں جو کافروں نے ترقیاں کری ہیں, خواہشات کے میدان میں ضرورت سے آگے جا کر کے, ٹھیک ہے, تو ہم ان خواہشات کے میدان میں ان کی ترقیوں سے مروب نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے خواہشات کے اندر بہت ترقی جو کری ہے نا, تو اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوا ہے اصل میں, بلکہ اس سے انسانیت کو نقصان ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا جو ہے نا, یہ اہم ہے, یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں نا تو اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے ہمارے ایمان کے اوپر, بہت گہرا اثر پڑتا ہے ہمارے ایمان کے اوپر, ٹھیک ہے. اور یہیں سے پھر نا پھر ہمارا ایمان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے عقائد بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور عمل تو ویسے بھی ہمارے کچھ قابل ہے ہی نہیں ویسے بھی, ٹھیک ہے. تو یہ بات اصل ہے, یہ بات سمجھنی لازم ہے. یہ آپ یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ نے یہ بات بھی نہیں سمجھی نا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے کا اور حدیث پڑھنے کا اور فقہ پڑھنے کا, ٹھیک ہے. بیکاز آپ کے تو عقائد ہی خراب ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھنا جو ہے نا یہ لازم ہے, ٹھیک ہے. اسی سے آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں گی اور اسی سے آپ اپنے اولاد کی ایمان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ کر سکیں گی, ورنہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں, اور یہ اگر کلیئر نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں ضرور سے پوچھیں, ٹھیک ہے. باقی پائتھاگورس کون تھا, اس نے کیا نظریہ پیش کیا تھا, اور وہ پتلموس کون تھا, اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, اگر آگے سمجھ میں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں آئے سمجھ میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ویسے تو آپ کی فقہ کی کلاس بھی شروع ہونی ہے تھوڑی دیر میں, لیکن آگے کی جو آیات ہے نا اس کا ہم تھوڑا سا جیسے ترجمہ چند آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگلی کلاس سے پھر ان کی تفسیر ہم پڑھنا شروع کریں. تو اب جو آیات ہیں اس میں یعنی غالباً پوری معرف القرآن میں یہ واحد مقام ہے کہ جس کے اندر حضرت نے باقاعدہ اس طریقے سے ایک ہیڈنگ بنائی ہے, عباد الرحمن, رحمان کے بندے. ٹھیک ہے, تو یہ نیچے انہوں نے فٹ نوٹ میں لکھا بھی ہے کہ یہاں یہ عنوان یعنی ہیڈنگ اس لیے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کو مستقل رسالے کی صورت اس نام سے شائع کیا جا سکتا ہے, اور جب ایسا کیا جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر تو انہوں نے بس سورت کی تفسیر چل رہی ہے تو سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تھا اور پھر یہ بس بیچ میں عباد الرحمن کی ہیڈنگ لگا کر کے آگے شروع کر دیا. لیکن اگر کوئی چاہے, حضرت کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ عباد الرحمن کے اوپر یہ ایک بک بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ میں سے کوئی چاہے کہ جی اس کو بک فارم کے اندر پبلش کریں تو پھر یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیے گا کیونکہ وہ ایک الگ سے پھر بک بنے گی. تو اس عنوان کے تحت پر حضرت نے ان آیات کو لکھا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہے, کہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے, الذین, یہ وہ ہوتے ہیں جو, یمشون علی الارض ہونا, چلتے ہیں زمین کے اوپر دبے پاؤں, ہلکے طریقے سے, ہونا, ہونن چلتے ہیں, ہلکے انداز میں چلتے ہیں, دبے پاؤں چلتے ہیں, یعنی اکڑ کے نہیں چلتے. اس کی تفصیل تو ہم تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے, خطاب کرتے ہیں ان سے, الجاہلون, جاہل قسم کے لوگ, قالو, وہ کہتے ہیں سلام. ٹھیک ہے, سلامتی, سلامت, پیس. ٹھیک ہے, اب یہ ایک آیت ہے, ترجمہ تو ہم نے اس کا پڑھ لیا, اس کو خلاصہ تفسیر سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی معرف و مسائل میں سے تفسیر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. خلاصہ تفسیر میں اس کی ترجمہ اور تفسیر یہ لکھی ہے کہ اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں توازو ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلنے کے ہیں نا وہ ایک عجیب طریقے سے, جیسے وہ ٹپ ٹو, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹپ ٹو کر کر کے چلنا نا, تو اس طرح سے چلتے نہیں ہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں توازو ہے تمام امور میں, صرف چلنے میں نہیں, اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اور خاص چال کی حیثیت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ دماغ داری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مداح نہیں ہے. دماغ داری کے ساتھ نرم رفتاری کا کیا مطلب, ٹھیک ہے, کہ باقاعدہ کانشیس ہو کر کے خاص انداز میں اپنے قدم کو بڑھانا, یہ ایکچولی یہ قابل تعریف بات نہیں ہے. بڑے کانشیس ہو کر کے چلنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اور یہ توازو تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں ہے, یعنی ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ توازو بھرے ہوتے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے کہ جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں. یہ قالو سلامہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, یا پیس بی ان ٹو یو, جس طرح کہ ہم دعوت و تبلیغ کا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ کافروں کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں, بلکہ رفع شر کی بات کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں قالو سلامہ کی تفسیر. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لیے انتقام قولی یا فعلی نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے خاطر, اپنی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتے ہیں, نہ تو زبانی انتقام لیتے ہیں کہ اس کو بھی منہ در منہ سنائی, نہ فعلی انتقام لیتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اب میں اس کو کسی اور وقت میں پھر اس کی پٹائی کروں گی یا کرواؤں گی, تو یہ نہیں کرتے ہیں. اور جو خشونت تعدیب و اصلاح و سیاست شرعیہ یا علائے کلمۃ الحق, کلمۃ اللہ کے لیے ہو, اس کی نفی مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یعنی اعلائے کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جو ایمان والے جہاد کرتے ہیں کافروں سے، رائٹ، تو اس کی نفی مقصود نہیں ہے کہ وہ بھی غلط کام ہے، نہیں، بلکہ اپنے نفس کی خاطر کسی سے انتقام لینا اس کی نفی ہے، کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگ اپنے نفس کی خاطر انتقام نہیں لیتے، اور جب ان کے ساتھ کوئی جہالت والا معاملہ کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر یعنی وہ جہالت کے جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ ایک اچھے انداز سے اور شر کو ریموو کرنے کے انداز سے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو خلاصہ تفسیر تھی، اور اس میں الفاظ بھی تھوڑے سے مشکل ہی تھے، باقی اس کی تفسیر انشاءاللہ کی کلاس میں اور مسائل سے پڑھیں گے، کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر تفسیر کی کلاس میں یہاں پہ روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غالباً کوئی سوال نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پرانے طالبات ہیں تو ان کو صرف تفسیر کے لیے انوائٹ کیا تھا، اگر وہ چاہیں تو فقہ کے لیے بھی رک سکتی ہیں، لیکن فقہ میں بس وہی تفصیل ویسی بیٹ سی لیور وغیرہ پڑھاتی ہیں، تو اس میں رکنا کوئی لازمی نہیں ہے کسی کے لیے سوائے نئے طالبات کے لیے۔ السلام علیکم۔